बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में क़याद आज़म के बारे में अपने तासुरात और अपने तजर्बात जो मैंने ख़ुद देखे हैं और तजर्बा किया है उनको बयान करना चाहता हूँ। क़याद आज़म को मैंने बहुत कई से देखा है और कई दफ़ा देखा है, तो वो बिल्कुल एक इंतहाई मॉडर्न गैर मजहबी लामजहबी शख्स दिखाई देते थे कि जो बिल्कुल सूटेड बूटेड क्लीन शेव मोस्ट मॉडर्न वेस्टर्न टाइप के आदमी दिखाई देते थे। कोई समझता नहीं था कि इनमें कोई मजहब का कोई उनसर मौजूद हो सकता है, ये तो उनका अपीयरेंस था। और जब मैंने पहली मरतबा उनको देखा, मैं उस वक्त 10 साल का था, तो मैंने ये अंदाजा हुआ कि ये तो बिल्कुल ही एक मॉडर्न आदमी है, सूटेड बूटेड वेस्टर्न आदमी है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो तो उनका लिबास वजा कथा तो बिल्कुल 100% वेस्टर्न थी, लेकिन उनका माइंड जो था वो इस्लामी था। और इसका सबूत पहला ये है जो मैंने उनके हालात में पढ़ के अंदाजा मुझे हुआ कि जब यहाँ से बारटला करने के लिए लंदन गए, तो पहला सवाल ये पैदा हुआ कि वो किस कॉलेज में दाखिला लें। जो उन्होंने तमाम कॉलेजों का दौरा किया, एक कॉलेज के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि टॉप लायर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अजीम अव्वलीन कायदीन कानूनदान, उनमें सबसे पहला नाम जो लिखा हुआ था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखा हुआ। उन्होंने फकत उन्होंने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिखा था बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उस कॉलेज वालों के नज़दीक सबसे बड़े कानूनदान जो थे दुनिया में नंबर वन वो हुजूर अकरम की ज़ात थी। भाई ये बोर्ड देखकर उन्होंने फैसला कर लिया फौरन देन एंड देयर कि मैं इसी कॉलेज में दाखिला लूँगा। इससे साफ आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है कि वो जो बिल्कुल सूटेड बूटेड दिखाई देता था, उसके दिल में कितनी मोहब्बत रसूल थी, कितना बड़ा आशिक रसूल था वो। और यही दलील है उसकी दीनदारी की। इकबाल ने कहा ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हम उस, मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओ पूरा दीन यही है। अगर बऊन रसी दी तमाम बूल हबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो सब कुफरी कुफर है, शिर्क ही शिर्क है। तो उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत थी, लिहाजा उन्होंने वहीं पर दाखिला लिया और बहुत आला नंबरों से पास हुए। यहां से अंदाजा हो गया कि उनका असल माइंड कैसा था। फिर दूसरा मौका सबसे बड़ा जिंदगी में जो आता है वो बीवी के इंतखाब का आता है। उन्होंने जिस खातून का इंतखाब किया, रत्ती उसका नाम था और वो मुसलमान नहीं थी, बहुत ज़हीन थी, बहुत अमीर ख़ानदान की थी, लेकिन उन्होंने उसको पहले इस्लामी तालीमात की किताबें दी, इस्लाम ब्रीफ किया, इस्लामी तालीमात को पहुंचाया। जब उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम इख्तियार कर लिया, ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हूं, उसके बाद उनसे निकाह किया। और इसका सबूत एक ये भी है कि जब उनकी बेटी ने उनसे कहा, उनकी बेटी ने भी एक पारसी से शादी की थी और जिस पे वो नाराज़ हो गए थे अपनी बेटी से, उससे बात नहीं करते थे, तो उसने एक दफ़ा कहा अपने बाप से कि आपने भी तो एक गैर मुस्लिम से शादी की थी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत बोल रही हो, मैंने की थी, पहले उसको मुसलमान किया था उसके बाद की थी, तुमने बगैर मुसलमान किए उसको उससे शादी कर ली, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। नाराज होना भी बताता है कि वो कितना इस्लामी माइंड थे, उनका माइंड था। और अपनी होने वाली बीवी को मुसलमान करना बताता है कि उनके अंदर इस्लाम कितना था। लिबास में ना हो, सूट बूट में ना हो, क्लीन शेव में ना हो, लेकिन दिल में था। उसके बाद तीसरा मौका आता है, अब उनकी शियत का इजहार होगा। और वो है कि जब उनके वादला का इंतकाल हुआ, ये डिक्लेयर्ड आगा खानी थे, आगा खान आगा खानी के उसमें, आगा खानियों के उसमें रजिस्टर में इनका नाम था, आगा खानी थे। 1913 में इनकी वादला का इंतकाल हुआ तो ये अपनी वादला की लाश को लेकर पहुंचे खोजा इसनाशरी शिया जमात के कब्रिस्तान, मां की लाश को लेकर पहुंचे। अच्छा वहां ये होता है, अभी भी होता है और पहले भी होता था कि जो कोई भी लेके आता था हमारा लाश दफनाने के लिए, उसे एक प्रोफार्मा भरना पड़ता है। उस प्रोफार्मा में ये पहला लिखा होता है कि इट इज टू बी सर्टिफाइड, मैं बाकी गवाही देता हूं कि आई बिलोंग टू शिया इसनाशरी खोजा जमात, कि मैं खोजा शिया इसनाशरी जमात हूं से ताल्लुक रखता हूं और मैं दिखा देता हूं कि मेरी वालदा को यहां दफन होने की इजाजत है। और वहां भी नीचे साइन करने होते हैं, जो भी दफनाने के लिए जो वारिस होता है जो मैयत को लेके आता है उसको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। वहां कायदे आजम ने सिग्नेचर किए उस फॉर्मा पर जो कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी वालदा के दफन होने से पहले भरा, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, छप चुका है, वो मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, उन्होंने सर्टिफाई किया उसमें। अब उसके बाद ये हुआ कि वो ज्वाइन किया उन्होंने गांधी को, नेहरू को, उनकी जमात के साथ, खासतौर से उस पर जबकि जमात जब अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चली, कांग्रेस ने तहरीक चलाई अंग्रेजों के खिलाफ, आजादी की तहरीक, वो अंग्रेज उस पर कमजोर हो चुके थे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, लिहाजा मौके से फायदा उठाया और तहरीक चली आजादी की, गांधी और नेहरू उसमें आगे आगे थे, कायदे आजम ने भी उनका साथ दिया क्योंकि वो भी आज़ादी के मतवाली थे। कोई आदमी गुलामी पसंद नहीं करता और समझदार आदमी गुलामी के नाम को सुनना बर्दाश्त नहीं करता। मुझे याद है मैं उस पर 10 साल का था, 9 साल 10 साल का था, मुझे ये एहसास होता था कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, तो कायदे आजम को कितना एहसास होता होगा। तो उन्होंने मुकाबला किया हिंदुओं के साथ मिलकर और यहां तक मुकाबला किया कि हिंदुओं को अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, आजादी देनी पड़ी, इसमें कायदे आजम का भी हाथ शामिल था। मगर कायदे आजम ये चाहते थे शुरू से कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें, बहुत कोशिश की उन्होंने, इत्तेहाद के बड़े हामी थे वो, बैक वक्त मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे बैक वक्त, और उन्होंने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप इस शर्त में कबूल की थी कि मुझे कांग्रेस में मैं मेंबर रहना होगा, मेंबर रहूंगा, वो चाहते थे दोनों मिल जाएं। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट ये है कि जब उन्होंने हिंदुओं के साथ काम किया, गांधी के साथ, नेहरू के साथ, पटेल के साथ और जो बड़े बड़े हिंदू सरदार थे, रहनुमा थे, और बहुत से वाकयात भी हुए जो तारीख में मौजूद हैं जिससे ब्लैक एंड वाइट साबित हो गया कि इनके दिलों में मुसलमानों से सख्त नफरत है, मुसलमानों को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है, मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको दबाकर मजलूम बनाकर रखना चाहते हैं, उनका गला घोटना चाहते हैं, उनके गले पर बैठना चाहते हैं, ये उनको बिल्कुल वाज़े हो गया। और इसका बयान सबूत मौजूद है हिस्ट्री के अंदर ऐसे वाकयात कि जिससे साबित हो गया कि इनके अंदर इन पटेल में, गांधी में और नेहरू में ये इत्तेहाद की रूह नहीं थी, वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अंग्रेजों से आजाद होकर मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ये कायदे आजम भाप गए, ये उनकी ज़ियानत और ये उनकी इस्लाम पसंदी और दीनदारी और शराफत अकलमंदी थी कि वो भाप गए कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते, लिहाजा उन्होंने फिर अल्लामा इकबाल के मशवरे पर अलग मुल्क की जो थी वो तहरीक शुरू की, पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। नहीं, हमें हिंदुओं के साथ रहना नहीं, आज़ादी हमको चाहिए मगर हम अलग, मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ इस्लामी अकदार के मुताबिक अपना अपना कल्चर के मुताबिक इस्लामी कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और आज़ाद हो, हम किसी के ग़ुलाम नहीं होना चाहते। ये तहरीक उन्होंने चलाई और ये तहरीक जो थी वो बड़े शोर शोर में चली। जिस वक्त ये तहरीक चल रही थी उस वक्त वो कराची में थे, कराची में मैं भी आते थे, तो कराची में से महज़ुल इस्लाम जहाँ उन्होंने पढ़ा था और मेरे वालिद वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ वो अक्सर आते थे लेक्चर देने के लिए। स्कूल का एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें शहर के अमायदीन भी आते थे और सारे प्रोफेसर, असातिज़ा, स्टूडेंट्स, मैट्रिक के स्टूडेंट्स बड़े वो आ जाते थे। मैं उस जमाने में छठी क्लास में था और उस जमाने में तहरीक चल रही थी, तहरीक चल रही थी, पाकिस्तान की शुरू हुई थी 1946-47 और कायद आज़म वहाँ की तकरीर करते थे और हमें याद है कि ट्रक आ जाते थे और तकरीर के बाद हम पूरे शहर में लड़के सब घूमते थे और नारा लगाते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। इतने नारे लगाते थे हम कि हमारा गला बैठ जाता, रात को आते थे तो हमें आवाज़ नहीं हमारी मुँह से करती। कायद आज़म तकरीर करते थे तुम अंग्रेजी में तकरीर करते। मैं उस वक्त पांचवी जमात में था, 10 साल की मेरी उम्र थी तो मेरी समझ नहीं आती थी और बहुत से स्टूडेंट्स हैं इनकी समझ नहीं आती थी, मगर मौजज़ा ये था कि सब लोग कभी 1 घंटा बोलते थे, कभी 1.5 घंटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। उनका अंदाज, उनका जो तेवर थे, जो उनका फेस इंप्रेशन था, जो उनका अंदाज बयान था, जो उनकी आवाज़ थी, आवाज़ में जो जोर था और जो यकीन था, जो ईमान था, वो इतना ताकतवर था कि सब मभूत होकर को सुनते थे और बाद में सब पूछते थे कि उन्होंने क्या कहा, तो हमारे जो असातिज़ा थे थोड़ा सा बिलीफ कर देते थे। उससे हमें समय आया उनका माइंड कि ये हमें अलग आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदुओं की गुलामी से, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ाद करना चाहते हैं। तो मैं उस जमाने में गुजराती स्कूल में पढ़ा था, हिंदुओं का स्कूल था, मुझे गुजराती पढ़ा रहे मेरे वालिद ने, जो उस जमाने में गुजराती ज़बान जो थी वो आम थी, कारोबारी ज़बान थी। मैं चौथी जमात में था, गुजराती फ्लुएंट बोलता था। तो जब मैं गया तो वहाँ स्कूल जब शुरू होता था तो बंदे मातरम ऐसे हाथ जोड़कर सारे तलबा पढ़ते थे, सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, तकरीबन 300 स्टूडेंट थे, हम खड़ों के पढ़ते थे बंदे मातरम हाथ जोड़कर। तो मैंने अपने हिंदू उस्ताद से पूछा ये बंदे मातरम का मतलब क्या है, उन्होंने कहा ये हमारा मजहबी वो है, ये मजहबी हमारा वो यानी नगमा है, तराना है। तो जब मैंने ये सुना कि ये हिंदू मजहब का तराना है तो मैंने उससे प्रिंसिपल से कहा कि भाई मैं तो नहीं सुनूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा ये, आई एम नॉट हिंदू, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा ये। उसने कहा नहीं आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा। मैं कहा नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो हिंदू नहीं हूँ, क्यों मैं क्यों पढ़ूँ, जब मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं क्यों पढ़ूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम अलग खड़ा हो जाओ, तो गुस्से में कहा। मैं कहा ठीक है मैं अलग खड़ा हो जाऊँगा। मैं अलग खड़ा हुआ तो दो लड़के और उन 300 में से दो लड़के और निकले जो मुसलमान थे, एक का नाम हुसैन था, एक का नाम था कासिम, वो निकल आए, वो भी आके मेरे साथ खड़े हो गए, हम भी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग खड़े रहते थे और वो बंदे मातरम पढ़ते थे और हमें देखते रहते थे गुस्से से। फिर हमें मूसले कहने लगे, वो मूसले यानी मुसलमान, और हमें तंग करने लगे, छेड़ने लगे, बल्कि मारने भी लगे। यहाँ तक नौबत पहुँची कि ये देखिए कायद आज़म की तकरीर का यानी वो था जोश असर, कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि स्कूल की छुट्टी होती थी तकरीबन 2 बजे दोपहर, छुट्टी हुई तो मैं किताबें जमा करने में लग गया, कुछ देर हो गई, सब लड़के चले गए तो मैं अकेला रह गया। तो 8 کے قریب لڑکے تھے ہندو جو مجھ سے اس میں طاقت میں بھی اور سائز میں بھی بڑے تھے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا اکیلا. اول تو مجھے مارا, میں مقابلہ کرتا رہا, پھر انہوں نے مجھے پکڑ کے اٹھا لیا. وہ اندر ایک بڑا ہاؤس تھا, ٹینک تھا بہت بڑا پانی سے بھرا ہوا, جس کے نیچے نل لگے ہوئے تھے, جس میں پانی پیتے بھی تھے ہم لوگ, پیر دھوتے بھی تھے, کئی نل لگے تھے اس میں. انہوں نے مجھے پانی کے ٹینک میں ڈال دیا, اور وہ ٹینک کافی گہرا تھا, ان کا مطلب یہ تھا کہ ڈوب کے مر جائے گا. اب جب میں ٹینک میں گرا اور نیچے پہنچا تہ تک, تو مجھے اندازہ ہوا یہ تو بہت گہرا ہے. میں نے پیر مارا, اوپر آیا تو اوپر سے وہ لوگ کھڑے تھے, انہوں نے میرے سر کو پھر دوبارہ دبا دیا پانی کے اندر. اب میں سمجھ گیا کہ اگر میں پھر دوبارہ نکلوں گا تو یہ میرا پھر سر دبا دیں گے, تو میں وہاں پانی کے اندر ہی بیٹھ گیا سانس روک کر بری حد تک. انہیں یقین ہو گیا کہ میں گیا, وہ بھاگے. اب جب میں کافی دیر میں نکلا, بہت مشکل سے بہت روکا میرے سانس, آج تک مجھے یاد ہے, بہت طاقت لگائی میں باہر نکلا تو وہ بھاگ چکے تھے. تو میں نے اپنے ہاتھ دونوں دیوار پہ ڈال دیے, میرا سانس نہیں آ رہا تھا. 5-7 منٹ میرا سانس آیا, ہوش بھی آیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ چپراسی جو تھا وہ اسکول کے دروازے بند کر رہا تھا. اب مجھے خوف ہوا کہ میں اکیلا بند ہو جاؤں گا یہاں. بہت مشکل سے میں اپنے آپ کو باہر گرایا, میں نے ٹینک کے باہر اپنے کو اتارا بہت مشکل, اور بھاگا. آخر دروازہ بند کر رہا تھا وہ چپراسی, جو حیران ہو گیا. میں بھاگ کر آ گیا سیدھا اسی عالم میں, پانی گر رہا تھا میرے جسم سے, اور میں گھر پہنچا. میرا گھر وہاں سے کوئی 1 فرلانگ دور تھا. تو میرے بھائی نے مجھے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, میں نے پورا قصہ سنا دیا. اگر بس آئندہ سے تم مت جانا, ختم. اب انہوں نے اپنے سیکنڈری, میں پرائمری اسکول میں تھا, اب انہوں نے مجھے سیکنڈری اسکول میں داخل کرا دیا صرف مدرسے کے اندر. تو اتنی نفرت تھی اور اتنا اثر تھا قائد اعظم کی تقریر کا, حالانکہ میں سمجھتا نہیں تھا. اور آپ دیکھیے کتنا طاقت اس میں طاقت تھی ان کے بیان میں. اسی زمانے میں میں نے سنا, مجھے لوگوں نے بتایا اسی زمانے میں, کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پنڈت نہرو پہنچے پشاور, اور وہاں کے پٹھانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جوائن کریں انڈیا کو بجائے پاکستان کے, وہ ووٹ دیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ. وہ پنڈت نہرو بڑے اچھے مقرر تھے اور بڑے ذہین سیاسی آدمی تھے, بلا کے انہوں نے بلا کی تقریریں کی, وہاں پر میٹنگز کی. اردو پر کو عبور تھا, ان کے ساتھ پشتو کے ترجمان موجود تھے, ان کا اثر ایک دم غالب آ گیا پشاور پر. جب قائد اعظم کو معلوم ہوا تو قائد اعظم پہنچے پشاور, نہرو وہیں موجود تھے, پہنچ گئے اور انہوں نے جلسہ کیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر. تو اس میں لکھا تھا اخبار میں کہ جب انہوں نے جلسہ کیا, قائد اعظم نے تقریر کی, تو پوری تقریر انگریزی میں کی, اور ان کی انگریزی بھی بہت زیادہ بہت مشکل انگریزی بولتے تھے, انگلینڈ کے پڑھے ہوئے تھے. اور یہ جاہل پٹھان, 1 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی. تقریر کے بعد ایک پریس کے آدمی نے, جو سب سے بڑا سردار تھا پٹھان, اس سے پوچھا کہ خان صاحب آپ سمجھا کیا بولا قائد اعظم نے, کیا بولا آپ سمجھا؟ تو اس نے کیا جملہ کہا, وہ سردار نے کہا ہم کچھ نہیں سمجھا, ہم اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا, مگر ایک بات ہم سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ بھی بولتا ہے یہ آدمی, یہ سچ بولتا ہے. اس کا لہجہ بتاتا ہے, اس کا انداز بتاتا ہے, لا الہ الا اللہ, ہم مر جائے گا ہم اسی کے ساتھ دے گا, ہم اس کا غلام ہیں, یہ جو کرے گا ہم وہ کرے گا, یہ سچ آدمی ہے. کمال دیکھیں آپ, یہ ان کا تیور, یہ سچائی کی طاقت دیکھیے. سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے, ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, کہ اس کی زبان ہے مرد مومن سے, زبان تھی اس کی انگریزی زبان, مگر آپ دیکھیے. اور جناب اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا وہاں پر پشاور میں کہ لوگ پہنچ گئے پنڈت جواہر لال نہرو کو مارنے کے لیے, اس کو بھاگنا پڑا اسی وقت ہوائی جہاز. ये उनका ईमान और ये उनकी ताकत थी। आप देखिए, जबान नहीं आती थी, उर्दू से ही बोल सकते नहीं सकते थे, गुजराती से ही नहीं बोल सकते थे, लेकिन आप ये देखिए क्या उनकी जबान थी, किस अंदाज से उन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद जो मैंने आखिरी बात उनकी देखी वो ये कि 14 अगस्त आई, 14 अगस्त मेरे भाई के उस्ताद थे मदरसे के, तो उनको भी बुलाया गया। मैंने कहा मैं साथ चलूंगा, बोले गए मुझे साथ। अगली सीट पर हम सोफे पर बैठे, मैं साथ बैठा। थोड़ी देर के बाद उनकी पुरानी गाड़ी जो थी उसी में वो आए, आगे फौज खड़ी हुई थी, इधर सारे अमाजीन बैठे हुए थे। कायद आजम मुझसे मेरे ख्याल में कोई 5 गज के फासले पर गाड़ी से आके उतरे। जब उतरे तो बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। जब चले स्टेज की तरफ जाने के लिए तो हवा चल रही थी, हवा का मुकाबला नहीं कर सके, रुक जाते थे, खड़े जाते थे। तो पीछे बॉडी गार्ड जो था अपना सीना जो था वो उनकी पीठ पे लगा देता था ताकि वो पीछे न जाए हवा की ताकत से। फिर जब हवा रुक जाती थी तो चलते थे आगे। 3-4 दफा रुकना पड़ा उनको, फिर सलामी ली उन्होंने और चले गए। ये जज्बा देखिए आप उनका, मैंने देखा कि पूरा मजमा जो था वो इस कदर शिद्दत के साथ नारे लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद, पूरी ताकत के साथ हर शख्स, हत्ता के जो अमाजीन थे वो तक नारे लगा रहे। ये उनका जोर ईमान था, ये उनका जोश ईमान था, ये उनका यहाँ हालांकि जाहिर में बिल्कुल 100% अंग्रेज लगते थे, लेकिन क्या उनका ईमान की ताकत थी और क्या उनका जहन था कि जिन्होंने इस मकाम तक उनको पहुंचा दिया। मैं जिंदगी में अपनी 2 आदमियों से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ हूं जिनको मैंने देखा है। एक कायद आजम मोहम्मद अली जिना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, और एक हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह। ये 2 शख्सियतों को मैं कभी नहीं भूल सकता, इनका जो तासुर मेरे दिल दिमाग वजूद पर पड़ा वो कभी मैं फरामोश नहीं कर सकता। तारीख साज लोग, इन्होंने तारीख को बदल दिया, तारीख के धारे को, दुनिया की तारीख के धारे को मोड़ दिया। ये 2 आदमी थे जो हमने देखा अपनी आंखों से। तो फिर उसके बाद वो मौका आया कि एक रात मैं सो रहा था अपने घर के बरामदे में, तकरीबन रात के 3 बजे का वक्त था, तो किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से, हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम सिमरसे के अंदर ही हमारा मकान था क्योंकि मेरे बारे वहाँ इमाम जमात भी थे, तो उनको घर वहाँ सिमरसे के अंदर ही मकान दिया गया था, सिर्फ मदरसतुल इस्लाम के अंदर ही मकान दिया गया था। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा था, गर्मियों का मौसम था, दरवाजे से नीचे से बहुत जोर से खड़खड़ाने की आवाज आई। मैं घबरा के उठा, मैं ऊपर से खिड़की खोली, देखा तो कोई 25-30 के करीब सिपाही और 4-5 सिपाहियों की पुलिस गाड़ियां खड़ी थी और पुलिस वर्दी में। मैं बड़ा घबराया, हम लोग पुलिस से बहुत डरते थे दोबारा बचपन में, हमें बच्चे 10 साल उम्र थी मेरी। मैं भाई आप कौन हैं और क्यों आए आप यहाँ, ऊपर से मैंने कहा। तो उन्होंने कहा नीचे से साहब ने कि हम मौलाना अनीसुल हसनैन साहब जो शिया आलिम दीन हैं और यहाँ उस्ताद हैं उनसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा भाई ये तो उनसे मिलने का वक्त नहीं है, वो तो आराम फरमा रहे हैं, रात के 3 बजे हैं। तो उन्होंने कहा नीचे से मुझसे आवाज़ देकर के, देखिए हमको मोहतरमा फातिमा जिना ने भेजा है, हमको मोहतरमा फातिमा जिना ने भेजा है और कायद आजम मोहम्मद अली जिना का इंतकाल हो गया। उफ, मुझे आज तक याद है कि वो कितना सख्त सदमा था जो मेरे दिल पे पहुंचा कि कायद आजम का इंतकाल हो गया। चोट लगी, पूरा वजूद काम गया मेरा। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना को आप उठाएं और उनसे कहें कि हम उनको लेने के लिए आए हैं और मोहतरमा फातिमा जिना की ये ख्वाहिश है कि वो उसको उनके तहत उनके जेर निगरानी गुस्ल कफन किया जा दिया जाए और वही नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो फिर मैंने दरवाजा खटखटाया, वाली साहब को उठाया, तशरीफ लाए, ऊपर से उन्होंने बात की, वही बात जो उन्होंने मुझसे कही थी वही बात उनसे भी कही और कहा हम आपको लेने के लिए आए हैं, गवर्नर हाउस से आए हैं हम लोग और आपको बुलाया जा रहा है, मानदार हो रहा है आपको। मेरे भाई साहब ने कपड़े वगैरह पहने और पुलिस गाड़ी में बैठकर पहले वो गए खारादर, यहाँ मस्जिद इमाम बड़ा है, उस बारे में वही मस्जिद इमाम बड़ा था, कराची में और कोई था ही नहीं, वहाँ हाजी कल्लू होते थे जो मुअज्जिन भी थे मस्जिद के और गसाल भी थे और हमारे वालिद के पुराने दोस्त भी थे। उनको उठाया और वहाँ से अलम भी लिया, कफन भी लिया और तमाम सामान तस्फीन का जो होते हैं वो सब लिए, वो ले के पहुँचे गवर्नर हाउस। वहाँ हाशिम रज़ा साहब उस जमाने में कमिश्नर थे, उन्होंने ये फरमाया कि आपको मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बुलाया है और ये काम आपके सुपुर्द किया है, ये मैयत अब आपके सुपुर्द है। तो मेरे भाई की निगरानी में हाजी कल्लू साहब ने मरहूम ने उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया। इसी असना में उस जमाने में एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम थे अब्दुल हामिद बदायूनी, बहुत बड़े आलिम थे वो, उनको खबर हो गई, वो आ गए और उन्होंने आगे कहा कि ये आपने मौलाना अनीसुल हसनैन साहब को क्यों मैयत सुपुर्द की है, ये तो हमारा हक है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा हक है कि हम उनको गुस्ल दें और कफन पहनाएं, इनको क्यों दिया आपने, ये कौन होते हैं। तो हाशिम रज़ा साहब ने और दीगर जो अमायदीन थे उन्होंने उनसे कहा कि देखिए बात यह है कि ये मोहतरमा फातिमा जिना साहिबा का हुक्म है कि उनको गुस्ल और कफन और नमाज जनाजा मौलाना सैयद अनीसुल हसनैन साहब क़िबला जो उस्ताद हैं और शिया आलिम हैं सिमतुल इस्लाम के वो पढ़ाएं, ऐसा उनकी हिदायत पर हमने उनको दिया है। तो वो मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भाई ने बताया कि वो आके मेरे भाई से मिले, बैठ के खड़े हो गए हाँ, तो वो आके मिले उनसे और भाई से कहा कि भाई हमें भी मौका दीजिए खिदमत का। मेरे भाई ने कहा आइए आइए आप तशरीफ लाइए, मगर गुस्लो कफन जो दिया जाएगा वो शिया इसना शरी मजहब के मुताबिक दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है ये शिया इसना शरी मजहब के अतबार से मुझे बुलाया गया है। तो वो नाराज होकर चले गए। उसके बाद गुस्लो कफन हुआ और सुबह वाली साहब ने वहां वहीं गवर्नर हाउस के अंदर गुस्लो कफन के बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इस बात को हाशिम रज़ा साहब ने भी लिखा डान अखबार में, अबुल हसन इस्फहानी साहब ने भी लिखा अपनी किताब के अंदर, और अबुल हसन इस्फहानी साहब ने यह भी लिखा जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है अपनी किताब में लिखा कि कायदे आज़म अपनी तहकीक से अपने मुताले की बुनियाद पर इस्माइली मजहब को छोड़कर इसना अशरी शिया मजहब को कबूल किया और आखिर दम तक वो शिया इसना अशरी मजहब पर थे। अबुल हसन इस्फहानी उनके बहुत करीब थे और उन्होंने बड़ी मदद की थी। दूसरा गवाही जो है उसकी वो मुझे दी रया साहब महमूद अब्बास साहब ने, मेरी कई जब मुलाकातें उनसे हुई, उन्होंने यही बात कही कि वो अपने मुताले की बुनियाद पर शिया इस्लाम शरी मजहब को उन्होंने कबूल किया था और मुझसे दरख्वास्त की थी कि आप पाकिस्तान के मामले में हमारी शिरकत हमारे साथ तआवुन फरमाएं, और मैंने जितना भी माल था वो बड़ी मालदार रियासत थी रामपुर की, उन्होंने वो वसाइल फराहम किए और इतने शरीफ इंसान थे कि जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आजम ने कहा कि आप जो अहदा चाहें ले लें, जो अहदा आप चाहें ले, आप ईस्ट पाकिस्तान का चाहें तो वजीर आला बन जाएं, यहाँ के चाहें तो यहाँ मगरबी पाकिस्तान के बन जाएं, या जो भी अहदा चाहें आप ले। तो उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये अहदों के लिए काम नहीं किया था, ये जो हमने मुल्क बनाया था, ये पाकिस्तान के लिए हमने जान खर्च की थी, माल खर्च किया था, दिन रात खर्च किए थे, कुर्बानियां पेश की थी, ये हमने अहदों के लिए नहीं की। क्या इंसानियत थी। ऐसा महमूदाबाद का मकाम वही है पाकिस्तानी तहरीक के अंदर कि जो मकाम बिला तशबीह हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन का था। इस्लाम की तहरीक के लिए कोई तहरीक दुनिया में माल के बगैर नहीं चल सकती, कोई छोटा सा इजारा भी माल के बगैर चल सकता। माल जो दिया था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, वो ऐसा महमूदाबाद ने दिया था। और एक उसका सबूत अल्लामा इब्न हसन जाटवी साहब अला अल्लाह मकामहू हैं, जो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे 4 साल पढ़ा, बहुत करीब से पढ़ा। ऐसा महमूदाबाद ने मुझे बताया था कि कायदे आज़म बहुत यानी हर एक की बात सुनते थे मगर कोई खास तवज्जो से नहीं सुनते थे, लेकिन जिस वक्त अल्लामा इब्न हसन जाटवी साहब अल्लाह मकामहू कोई बात कहना चाहते थे वो कैबिनेट के अंदर, तो अपना हाथ उठाते थे। जिस वक्त अल्लामा साहब हाथ उठाते थे तो कायदे आज़म फौरन पेंसिल उठा लेते थे और पूरी तवज्जो से अल्लामा जाटवी साहब की बात सुनते थे और नोट करते थे उन बातों को जो अल्लामा साहब कहते थे। इतना उनका एहतराम करते थे, इतना उनका ख्याल करते थे। और वो भी ऐसे आदमी थे कि हालांकि उन्होंने मुस्लिम लीग के मेंबर थे, रुकन थे और उन्होंने कोई अहदा नहीं लिया। आखिरी उम्र भी उनकी फकर फाके के करीब गुजरी, पढ़ाते रहे लेकिन उन्होंने कोई अहदा नहीं लिया। वो उस्ताद थे रैसा महमूदाबाद के, तारीख थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों हजरात ने कोई अहदा नहीं लिया, कोई माली फायदा हासिल नहीं किया पाकिस्तान बनाने से। वो ये कहते रहे जैसे कायदे आज़म सिर्फ 1 रुपया लेते थे, तनख्वाह की रुपया सिर्फ 1 रुपया लेते थे बस, वो भी एक रस्मी बात थी, वरना कोई उन्होंने पैसे नहीं लिए, सिर्फ अपनी जो ज़ाती मेहनत से माल कमाया उसी में जिंदगी गुजारी, गाड़ी तक अपनी इस्तेमाल की। ये देखिए आप क्या किरदार था उनका कि हालांकि जितनी जाते थे अय्याशी कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही बात है कि जिसकी वजह से हिंदू उनके उनसे दुश्मन थे, नफरत करते थे, क्योंकि वो इस्लाम पसंद थे और वो हिंदुओं की हकीकत को, ज़हनियत को जानते थे। और अब देखिए कायदे आज़म की बात सही साबित हो गई, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। अब आप इंडिया में देख लीजिए आज हिंदू तो अब देखिए कि वो किस तरह मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं, हालांकि उनका आइन के खिलाफ है, उनका आइन सेकुलर है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ सब बराबर हैं, किसी मजहब को हकीकत हासिल नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है आइन के अंदर। और आप देखिए अमलन क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कायदे आज़म बिल्कुल सही, इनके जहन को, हिंदू जहनीत को पढ़ चुके थे। आज सारे मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के मान गए हैं इस बात को कि कायदे आज़म ने सही समझा था, उन्होंने जो फैसला किया था वो 100% सही था, हम नहीं समझे थे। और कायदे आज़म इतने मजहबी इंसान थे अंदर से कि जब वो लखनऊ गए तो मेरे जद, मेरे भाई के सगे चचा आयतुल्ला नजमुल हसन नजमुल उलमा अल्लाह मकामहू उनसे मिलने खुद गए और उनसे पाकिस्तान के बारे में मशवरा किया। ये उनका ख्याल, उलमा का इतना लिहाज करते थे और मजहबी अकदार का लिहाज करते थे। आज तक हिंदू तक कोई उनके किरदार पर निशानी लगा सका। और ज़हानत की आखिरी बात कहता हूँ, ज़हानत की इंतहा ये थी कि जवान पाकिस्तान बन रहा था तो ब्रिटिश असेंबली के 5 बहुत टॉप अरकान यहाँ आए इंडिया 3 आदमियों का इंटरव्यू लेने के लिए, गांधी, नेहरू और कायद आजम, बस उन्होंने सिर्फ तीन राज्यों का इंटरव्यू लिया। उस रिपोर्ट में लिखा, आखिर में लिखा उन्होंने, कायद आजम फिर जब उन्होंने इंटरव्यू लिया कई घंटे का, उसके बाद लिखा उन्होंने रिपोर्ट के अंदर अपनी, कि कायद आजम ने तो ऐसे आर्गूमेंट दिए हैं पाकिस्तान बनने के, ऐसे जबरदस्त आर्गूमेंट दिए हैं कि उन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने, उन्होंने हमारे हाथ पांव को बिल्कुल बांध दिया। यानी इतने स्ट्रांग आर्गूमेंट उन्होंने दिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बात कहता है वो सही कहता है। यानी ये आर्गूमेंट की ताकत थी कि वो आर्गूमेंट समझ के उन्होंने माना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो असेंबली के मेंबरान थे, और वो उनके ईमान की ताकत थी कि जो लोग उनकी जबान समझते नहीं थे वो भी मानते थे कि ये बात सही बोलते हैं, और ये उनके जहनत की इंतहा थी कि उन्होंने हिंदू माइंड पढ़ लिया और मुसलमानों को हिंदुओं की गुलामी से बचा लिया। आज जो ये पाकिस्तान का आजाद मुल्क है, अफसोस कि हम मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके, अफसोस हम पर है कि हम दो हिस्से में आज एक हिस्सा आधा रह गया हमारा, बड़ा हिस्सा तो हमारा जा चुका, एक बाजू तो हमारा कट चुका। लेकिन ये बहरहाल अगरचे वो कट गया, आज उसका नाम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन आज भी वो बांग्लादेश अलग मुल्क के हिंदुओं का गुलाम नहीं है। ये भी कायद आजम का एहसान है कि बांग्लादेश अगरचे आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मगर आज वो हिंदुओं का गुलाम नहीं है, ये भी बात तय है। और ये हिंदुओं का गुलाम नहीं है, एक आज़ाद मुल्क है, मुसलमानों की हुकूमत है, ये भी कायद आजम का एहसान है। चाहे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ ना रहें, असल चीज़ तो आज़ादी है। नाम कुछ भी हो, नाम से क्या होता है। अगर आज हम मसलन सब तय कर लें पाकिस्तान का नाम इस्लामिस्तान कर दें मसलन, या कोई और नाम कर दें, इससे क्या होता है। असल चीज़ तो आज़ादी है, नेमत जो है आज़ादी की नेमत है वो। ठीक है, वो हमारी गलती है, मैं अपनी हम अपनी नाअहली को मानते हैं, एनी हाउ ये भी कायद आजम का एहसान है कि आज बांग्लादेश जो है एक मुसलमान मुल्क है, या मुसलमानों की हुकूमत है, या मुसलमान आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए आज़ाद हैं, और इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमसे बेहतर हालात में हैं, है ये भी कायद आजम का एहसान। पर ये भी आज हिंदुओं के गुलाम होते, लिहाजा ये एक हकीकत है कि कायद आजम की शख्सियत एक इतना बड़ा एहसान है, और उनकी ऐसी इंसानियत की उनकी हालत ये थी। बस आखिरी बात कि मैंने सुना कि एक गाड़ी जो हिंदुओं की जा रही थी कराची से, उसको मकरानियों ने काट दिया, हिंदुओं को स्टेशन पर, कराची स्टेशन पर। हमारा घर स्टेशन से करीब था, हमको छह सात लड़के, हम चुपके से गए, सड़कें सुनसान पड़ी थी, हम गए स्टेशन के अंदर। मैं जो वहां गया, मैंने देखा लाशें पड़ी हुई थी पूरे प्लेटफॉर्म पे, लाशें, आधी लाश ट्रेन के अंदर है, आधी बाहर। वो देखकर तो मैं कांप गया, हम तो बच्चे थे, 10 साल की उम्र हमारी थी, हम तो कांप गए उसको देखकर। अभी हम कांप ही रहे थे कि एकदम से सीटियां बजने की आवाज आई गाड़ियों की, अब देखा तो पुलिस चली आ रही है और बीच में कायद आजम चले आ रहे हैं। यानी कायद आजम उसी वक्त पहुंच गया जब ये गाड़ी काटी गई है, कुछ देर के बाद कायद आजम पहुंच गए देखने के लिए, और उन्होंने ऐसे अहकाम सादिर किए कि उसके बाद कोई हंगामा नहीं हुआ, उसके बाद कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई किसी ने मुसलमान हिंदुओं को नहीं मारा, और सारे मुसलमान जो थे वो उन्होंने हिफाजत की हिंदुओं की। खुद हमारे घर के सामने एक वो रहता था हिंदू, बहुत अमीर आदमी था, हमारे घर के सामने रहता था बिल्कुल, उसकी जवान लड़कियां थी, वो घबरा गया कि कहीं मेरे घर पे हमला ना हो जाए। मेरे भाई तो आलिम दीन थे, अमामा मानते थे, लेकिन मुझे याद है आज तक कि वो हिंदू कभी नहीं आया था हमारे घर। वो हमारे घर दरवाजे पे आया, मैंने दरवाजा खोला, काम में मौलवी साहब से मिलना चाहता हूँ, मैं ले गया, हैरान भी था मैं, अब क्या बात हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि इनकी फैमिली ऊपर रहेगी, हमारे ऊपर मकान के ऊपर एक टीन पड़ा हुआ था, एक कमरा था जिस पर टीन पड़ा हुआ था, उस कमरे में रहेगी, वो वहीं पर रखा गया उनको, और मेरे वालिद ने एक हफ्ता उनके मेहमानी की, खाना वाना सब ऊपर जाता था, और फिर घोड़ा गाड़ी मंगा कर उनके फैमिली को बिठा कर खुद साथ गए दूसरी घोड़ा गाड़ी में और केमाड़ी पे जहाज में बिठाया ताकि उनकी जान माल इज्जत आबू सब महफूज रहे। ये और ये ऐसा बहुत से मेहमानों ने किया, और यह काजी आजम की फरमाइश और हुक्म था कि ये हमारे मेहमान हैं, ये हर हिंदू जो यहाँ पाकिस्तान में वो हमारा मेहमान है, हम उसके महाफिज हैं, ये हमारी शरी कानूनी मजहबी अखलाकी जिम्मेदारी, ये उनका किरदार था। अफसोस है कि आज हिंदू अपने हिंदुस्तान की हुकूमत अपने तमाम अहद को फरामोश कर चुकी है, अपने आइन को फरामोश कर चुकी है, अपने दस्तूर को फरामोश कर चुकी है, और वो काम कर रही है कि जो कायदे आज़म समझते थे कि आखिरकार ये करेंगे। मैं दुआ करता हूँ खुदा आलम हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए, उनको आज़ादी अता फरमाए, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाज़त फरमाए, और उनको तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, बंगला देश को तरक्की अता फरमाए, कायदे आज़म की रूह को इसका सवाब अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह की बारगाह में उनकी अजमत और मरतबों को बुलंद फरमाए, उनके अमाल को कबूल फरमाए। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार। मैं एक बात कहना भूल गया कि क़ायदे आज़म के जब मैयत पे वाले मेरे वालिद गए थे तो अलम भी ले गए थे, मिंबर से उतारा था अलम बड़े माँ बाड़े के और साथ ले गए थे। वो अलम आप देखेंगे जब जितने फोटो उनके मज़ार के उनके तदफीन के आप देखेंगे तो उसमें उनके वो अलम देखेंगे आप, स्याह अलम जो वालिद साहब ले गए थे जो उनके साथ मौजूद था अलम, यानी ये इस बात का सबूत है कि वो उनकी तदफीन और उनके तमाम जो अरकान थे वो सब शिया इसरा सही तरीके से अंजाम पाए, और इस बात को तकरीबन तमाम लोगों ने माना है। खुद असेंबली के फ्लोर पर मैंने ख्वाजा आसिफ को ये कहते हुए देखा, खुद उसने कहा कि पीछे तस्वीर जो लगी हुई है आपके पीछे, स्पीकर से कहा स्पीकर साहब ये जो पीछे तस्वीर आपके लगी हुई है ये शिया की तस्वीर, तस्वीर कायदे आज़म की थी, शिया आदमी ने पाकिस्तान बनाया है। ठीक है वो कैसा भी आदमी था मुझे इससे बहस नहीं है, लेकिन वो तहजब का जो वो था अल्ताफ हुसैन उसने भी बात का एतराफ़ किया कि क़ायदे आज़म शिया थे, उसने बयान दिया कि उनको शिया आलिम मौलाना अनीसुल हसनैन साहब ने उनकी नमाज पढ़ जनाजा पढ़ाई, और जितने भी लोग मौजूद थे वहाँ पर पूरा यानी सुफरा थे वज़रा थे और फिर मोहम्मद अली जिन्ना के जो ख़ास आदमी थे लियाकत अली खान जो उनके वज़ीर आज़म थे उनके सामने वो बैठे रहे और अलम के साए में उनकी तस्वीर होती रही तलकीन होती रही, वो देखते रहे वहाँ बैठे रहे, वो उनका फोटो मौजूद है अलम के साए में बैठे रहे और पूरी तस्वीर के अमल को देखते रहे, तलकीन पड़ी गई उनके मैयत के ऊपर शिया तरीके से अलम के साए के अंदर। तो इसमें कोई बात हम इसमें तासुब की बात नहीं है, कोई इसमें फिरके वारियत की बात नहीं है, सारे मुसलमानों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया, सुन्नी शिया सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया, मगर ये मानना चाहिए तमाम मुसलमानों को कि इसमें शिया भी शामिल थे और सुन्नी भी शामिल थे। अगर क़ायदे आज़म शिया थे तो अल्लामा इक़बाल सुन्नी थे, लियाकत अली खान सुन्नी थे, फैसल महमूद अब्बास शिया थे, अलामा जाती साहब शिया थे, तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी सुन्नी थे जिन्होंने बाद दूसरी नमाज पढ़ाई उनकी खबर के ऊपर। तो मेरा मकसद फिरका वारियत नहीं है, मैं कोई शिया की बरतरी नहीं चाहता हूँ, मैं ये फकत कहना चाहता हूँ कि क़ायदे आज़म जो थे वो शिया थे, इसना शरी थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और ये तमाम आलम इस्लाम को मानना चाहिए कि पाकिस्तान किसी एक फिरके ने नहीं बनाया है, पाकिस्तान तमाम मुसलमानों ने मिलकर बनाया है। ये तमाम मुसलमान जो है वो मुश्तरका तौर पर, आज इमाम खुमैनी ने फरमाया था, आज सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस्लाम मुसलमानों का, इस्लाम का वो शख्स है जो मुसलमानों में फिरके वारियत और तफरका पैदा करता है। मैं तफरका पैदा करना नहीं चाहता, मैं लाना करता हूं उन मुल्लाओं पर या उन वकीलों खदीमों पर जो मुसलमानों को लड़ा जाते हैं आपस, हम एक हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी मददुल आली ने फरमाया कि सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नी हमारी जान है। मुझे डॉक्टर डॉक्टर जो कलमे साजिद साहब ने खुद कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुझे बुला कर ये कहा कि आपका मिशन ये होना चाहिए कि आप मुसलमानों को मुत्तहिद करें। और मैं आखिर में खत्म करता हूँ इमाम खुमैनी के जुमले पर, इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि हम तो लड़ रहे हैं इस बात पर कि हाथ खोल के नमाज पढ़ें या हाथ बांध के नमाज पढ़ें, और हमारे दुश्मन इस फिक्र में है कि हमारे हाथों ही को काट दें, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न हाथ बंधे न हाथ खुलें। नहीं, हमें कतन फिरके वारियत से काम लेना नहीं चाहिए, हम एक हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा एक कलमा है, हमारा एक अकीदा है, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा काबा एक है, हमारा दीन एक है, ईमान एक है। बाकी ये बात कि कायद आजम एक मुसलमान की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और हमें भी आज एक मुसलमान की हैसियत से, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए, अपनाना चाहिए। और कोई ये समझे कि ये कि एक फिरके का कंट्रीब्यूशन है, वो तारीख को झुठला रहा है, हकायक को झुठला रहा है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान सारे फिरकों मुसलमानों का मुत्तहिदा एक कोशिश है जो अल्लाह ने कामयाब की है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा नालम पाकिस्तान को ताइंदा पाबिंदा पाइंदा और खुशहाल मुल्क बना दे, तरक्की याफ्ता मुल्क बना दे, हमारे दुश्मनों को नाकाम बना दे और हमें सब पर गालिब बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाँ, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सवाल।
माशाल्लाह, मैंने अनम्यूट कर दिया, जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।
वो था बताते हैं कि सिंध मदरसा इस्लाम के जो ग्रेजुएट प्रोफाइल है ना, उसमें पहले पेज पे मौलाना अनीसुल हसनैन और फैज़ान की आज भी तस्वीर है। जो सिंध मदरसा इस्लाम की जो ग्रेजुएट प्रोफाइल है उसमें पहले पेज पे फैज़ान आज़म के साथ मौलाना अनीसुल हसनैन रिज़वी की तस्वीर है आज भी।
हाँ, ये जो काज कौन से उसमें सिंध इस्लाम का जो वो है, क्या है
ग्रेजुएट प्रोफाइल,
सिमतुल इस्लाम का जो
ग्रेजुएट प्रोफाइल है,
प्रोफाइल जो है उसके सरनामे पर सुर्खी पर तस्वीर है जिसमें कायद आजम के साथ मेरे भाई की तस्वीर भी शामिल है। आप कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह
का। जी सैयद रजा हुसैन बात कर रहा हूँ मेलबर्न से। आपने माशाल्लाह बड़ी मुफस्सल तकरीर इस हवाले से फरमाई और सारे हालात और वाकयात के हवाले से, और जिस तरह से कायदे आज़म ने हमें एक नेमत पाकिस्तान दिया, उसमें ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के दौर में आप जिस तरह देख रहे हैं कि शिया सुन्नी नफरतें फैल चुकी हैं हर मिंबर से, हर जगह से, हमारे यहाँ से भी, दूसरी जगह से भी गैर मियादी दौर की तकरीरें होती हैं इस वजह से, और मजीद जैसे शिया सुन्नी जो झगड़े हैं वो तो आपको पता है कि वो काफी सदियों से चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने दौर के हालात के बारे में बताएं। जब पाकिस्तान नया नया बना था उसके बाद से ये जिया के दौर से पहले पहले शिया सुन्नी हालात कैसे हुआ करते थे, जिया से पहले और कायद आजम के इंतकाल के बाद उस दरमियान शिया सुन्नी हालात में आपने जो देखा, क्या देखा शिया सुन्नी के दरमियान?
बड़ा का इत्तेहाद था, जबरदस्त इत्तेहाद था। कभी कोई फिरका किसी फिरके के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर नहीं करता था, बल्कि کئی جلسے میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں جس میں سنی علماء آتے تھے شیعوں میں تقریر کرنے کے لیے. خاص طور سے مجھے یاد ہے نہض البقیع کے موقع پر, انہدام نہض البقیع کے موقع پر مولانا عبدالحمید بدایونی صاحب, بارہا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہر سال آتے تھے اور بڑی پرجوش تقریر کرتے تھے سعودی حکومت کے خلاف. اور ایسے ہی محرم کے مہینے میں اکابر سنی علماء اشرہ پڑھتے تھے محرم کا, روتے تھے, رلاتے تھے, جلوس میں شریک ہوتے تھے, ماتم نہیں کرتے تھے مگر شریک ہوتے تھے. بندہ روڈ پر, آدھے بندہ روڈ پر شیعوں کا جلوس نکلتا تھا, آدھے بندہ روڈ پر سنیوں کا. شیعوں کے جلوس میں ماتم ہوتا تھا اور سنیوں کے جلوس میں وہ اکھاڑا ہوتا تھا, شربت پلاتے تھے, وہ بہادری کا اظہار کرتے تھے. اور وہ اس کا ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں لڑنے کی, اس لیے ہم اپنے اندر یہ اپنی طاقت پیدا کر رہے ہیں ان کے دشمنوں کو مارنے کے لیے. بہرحال فلسفے سے آپ کو اختلاف ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہر ایک اپنا اپنی تھنکنگ ہے, مگر وہ امام حسین السلام کو مانتے تھے, ان کی عظمت کو مانتے تھے, ان کا شربت سبیلوں میں بنا کے پلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے اور روتے بھی تھے اور مجسمے برپا کرتے تھے, اور کسی قسم کا کبھی کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا. یہ سب سے پہلے جو یہ شروع ہوا ہے چکر, میری اطلاع میں, جو میرے تجربے میں, یہ ضیاء الحق کے زمانے شروع ہوا. انہوں نے یہ جذبہ بیدار کیا, اور یہ کہ یہ فرقہ واریت کو سواد اعظم بنائی, اور یہ کہ ہم الگ ہیں اور یہ الگ ہیں, یہ سب جو شروع ہوا یہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. سب متحد تھے, کوئی آپ کو رپورٹ نہیں ملے گی. اتنے جلوس نکلتے تھے, اتنی مجلسیں ہوتی تھیں, اتنے لوگ آتے تھے جاتے تھے, سنیوں میں, شیعوں میں, سنی شیعوں میں آتے تھے, شیعہ سنی جاتے تھے مجلسوں میں, اور کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ایک قصہ نہیں ملے گا آپ پورے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں. یہ بعد میں طاقتوں نے پیسہ خرچ کیا ہے, یہ خریدے ہوئے ملا ہیں, دے آر پیڈ, جنہوں نے یہاں پر شیعہ سنی فساد پھیلانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول یہ فلسفہ ہے ویسٹ کا, اور یہ ان کے پیڈ ایجنٹ ہیں جو کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ لیول کے اوپر دیکھیے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اعلیٰ لیول. بقول اقبال, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزرو دلق اویسو چادر زہرا. جو شیخ حرم ہے وہی لڑوانے کو یہ کر رہا ہے مسلمانوں, ایران کو اور عربستان کو. آپ دیکھیے یہ شیخ حرم کا کام, یہ شیخ حرم کا کام فقط یہ ہے کہ یہ مکے کی بات کرے. شیخ حرم تو وہ ہوتا ہے جو پورے اسلام کی بات کرے, مسلمانوں کی بات کرے, حفاظت کرے. مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف امریکنوں کو جنگ لڑنے کی کوشش کے لیے پیسہ دینے کے تیار ہے, دے رہا ہے پیسہ. یہ جہاں یہ انجام ہو اور جہاں یہ افسوسناک حالت ہو ہماری, تو کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ایسے بے غیرتوں سے نجات عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح رہنما, قائد اعظم جیسے رہنما, امام خوانی جیسے رہنما فراہم فرمائے, اور ہماری قیادت فرمائے, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے.
اللہ آمین, اللہ آمین, جزاک اللہ.
آگے بتا دیں کہ آپ نے سورہ اعراف کی 105 والی آیت میں تفسیر میں پاکستان کی بنیاد کے بارے میں لکھا ہے.
کیا
سورہ اعراف کی جو ہے آیت 105 کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے پاکستان کی بنیاد کے بارے میں لکھا ہے؟
ہاں, میں اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی. سورہ اعراف کی 105 نمبر آیت میں نے یہ بات لکھی ہے اپنے تفسیر کے اندر بھی, کہ بنا آخر کیا ضرورت تھی. اگر مطلب یہ کہ اسلام کی ضرورت نہیں تھی تو پھر ہندو کے ساتھ رہنے میں کیا قباحت تھی؟ ہم ساتھ رہتے. آج ہم کا موقف یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا آئین زندگی، قانون زندگی، دستور حیات اور ہے، ہندوؤں کا اور ہے، کلچر اور ہے، مذہب اور ہے، نظریات اور ہیں، وے آف لائف اور ہے، تہذیب اور ہے، تمدن اور ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اصلی بات وہی تھی کہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ بلاخر یہ ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے اور ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلیں گے اور ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے، اور بدتر غلام، اور بدتر آقا کی غلام بن جائیں گے. یہ ان کا احسان ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر پاکستانی، ہر بنگلہ دیشی کے اوپر، کہ انہوں نے ہم کو غلامی سے آزاد کر دیا. اب ہم غلام نہیں ہیں کسی کے. ٹھیک ہے ہماری حکومتیں ہو سکتا ہے کرپٹ ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے وزراء کرپٹ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا طریقہ جو حکومت ہے وہ صحیح نہ ہو، مگر ہم آزاد ہیں، ہمارے کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اور ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا انشاءاللہ ہمیں کامیاب بنائے. گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیمسیلفز.
جی جواد نقوی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم قبلہ.
وعلیکم السلام.
اچھا قبلہ، تھوڑا سا اس چیز پہ آپ کو مطلب خدا نے موقع دیا جب ہمارے درمیان ایک طرح سے تاریخ کو بیان کرنے کا بھی، اور جو ہے مطلب اس پہ ایک تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرنے کا. ایک چیز کو بیان کیجئے گا کہ آپ کو کچھ وقت یقیناً ملا ہوگا اپنے والد کے حساب سے کے حوالے سے کہ علماء کے درمیان آپ بیٹھے ہوں گے. اب میرا خیال ہے کہ آپ یقیناً مسلمانوں کے دونوں فرقوں، سنی اور شیعہ دونوں علماء کے درمیان بیٹھنے کا آپ کو اچھا موقع ملا ہوگا. اور تقریباً ہر اچھا، تو یہ جو قومی یکجہتی کے حوالے سے جو ایک رویہ پایا جاتا تھا اور جس کو فروغ دینا چاہیے تھا اور حکومتوں کو اب بھی فروغ دینا چاہیے، اس بارے میں مطلب ہے کہ قدیم علماء کا کیا رویہ تھا اور اب جو آپ نے تبدیلی دیکھی ہے اس کو اس میں وہ رویہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہمارے اندر ایسے علماء موجود ہیں، خطبہ لیڈرز موجود ہیں جو ویل کنیکٹڈ ہیں، ویل پیڈ ہیں، جن کا واحد مقصد یہی ہے کہ یہاں اختلاف مذہب کا پیدا کیا جائے، لڑوایا جائے، کٹوایا جائے، مروایا جائے، تاکہ یہاں کی اتحاد ختم ہو جائے، امن و امان ختم ہو جائے، معیشت تباہ ہو جائے اور ملک تباہ ہو جائے، کمزور ہو جائے. اب وہ جو پیڑ ہیں انہیں ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ان کو پیسے مل رہے ہیں، بار اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں ان کے پیسے، آپ پکڑ سکتے بھی نہیں. کہاں کہاں ملکوں میں انہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے، وہاں ان کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ مالا مال ہیں. اب ان کو تو مال اسی بات کا ملتا ہے، تو وہ کیسے وہ اس کو چھوڑ دیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کی تو روٹی اسی سے وابستہ ہے. اب یہ کہ یہ چیز ہوتی ہے شعور، اصل چیز قائد اعظم نے کام جو کیا 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 مسلمانوں کے اندر شعور بیدار کیا. اتنے مسلمانوں نے ساتھ دیا، اتنے مسلمان کٹ گئے ان کے کہنے پر، کیوں؟ انہوں نے شعور بیدار کیا کہ نہیں بھائی، ہمیں غلامی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو آزادی دینی ہے، ہمیں آزاد ملک میں آزاد ہو کر رہنا چاہتے ہیں. یہ شعور تھا جو انہوں نے بیدار کیا، جس کی وجہ سے ملک بھرا. آج ہمیں یہ شعور بیدار کرنا پڑے گا اپنی قوم کے اندر، وہ ہم ایک ہیں. اور اس کا ثبوت سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے امام خمینی نے ثبوت پیش کر دیا کہ انہوں نے سب کو متحد کیا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں یہ طاقت ہے، اور انہوں نے اتحاد کے لیے پوری کوشش کی اور یہ بتایا کہ آج سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا وہ انسان ہے کہ جو مسلمانوں کو لڑاتا ہے. قرآن میں کہا ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں آج جو آدمی بھی مسلمانوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے کسی لباس میں ہو وہ شیطان ہے, قرآن کی روح سے شیطان ہے. وہ قرآن نے کہا ہے کہ شیطان تمہارے ابلیس تمہارے دلوں میں جھگڑے پیدا کرتا ہے, تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے. جادوگروں کے بعد قرآن میں کہا کہ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں. جادوگر کیا ہوتا ہے؟ جادوگر شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے انسانی شکل میں. شیاطین فقط جنوں میں نہیں ہوتے, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ شیاطین ہیں, انس ہیں, انسانی شکل کے شیاطین ہیں کہ جو ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفاد, ذاتی مفاد کے لیے. ان کو صرف ذاتی مفاد عزیز ہے بس. ورنہ حضرت علی اگرچہ اس بات کا دعوے دار تھے کہ حق میرا ہے حکومت کا خلافت کا, انہوں نے ثابت کر دیا بلیک اینڈ وائٹ, حضرت بکر کے سامنے ثابت کر دیا. بھائی اب دیکھا کہ مسلمانوں نے نہیں مانا, آپ خاموش ہوئے, آپ نے تلوار نہیں اٹھائی, جھگڑا نہیں کیا, کیونکہ حضور کی یہ وصیت تھی کہ جھگڑا مت کرنا. دیکھیے حضرت موسیٰ کو نے چھوڑا تھا, حضرت ہارون کو چلے گئے تھے, اور ان کی جماعت بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کر دی, گائے کے بچے کو پوجا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ آئے, انہوں نے گریبان پکڑ لیا حضرت ہارون کا, تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے اس بات نہیں روکا کہ پھر آپس میں جھگڑا ہو جاتا, پھر آپ ہی ان سے کہتے کہ آپ نے لڑوا دیا, تمہیں لڑوا دیا قوم کو آپس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی شرک برداشت کر لیا, حضرت ہارون نے شرک برداشت کر لیا مگر آپس میں جھگڑا برداشت نہیں کیا کرانا. وہ طریقہ بھی یہی وہ تھا نقطہ نظر, کہ انہوں نے اپنی حکومت کو جاتے ہوئے جانا جاتے ہوئے دیکھنا برداشت کر لیا مگر مسلمانوں کو لڑوانا برداشت نہیں کیا. اور پھر جب حضرت عمر نے ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ ہمارے شورا میں آ جائیے, ہمیں مشورہ دیجیے, اس میں شامل ہوئے اور مشورے دیے. اور اسپرٹ آف اسلام میں جسٹس امیر علی نے لکھا ہے کہ جتنے بھی اصلاحات ہوئی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں وہ سب حضرت علی کے مشورے سے ہوئی ہیں. اور حضرت علی نے حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ہی ان کو امپلیمنٹ کریں, انہوں نے امپلیمنٹ کیا, کیونکہ یہ معاملہ امت کا تھا, ذاتی معاملہ نہیں تھا, ذاتی اختلاف صحیح اپنے مقام پر, جہاں تک امت کا معاملہ تھا انہوں نے ساتھ دیا, جنگی موقعوں پر ساتھ دیا, جنگی مشورے دیے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ تو ہمارا, ہم اگر حضرت علی کو ماننے والے ہیں, اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں ہم, تو ہم کو حضرت علی کے طریقے میں چلنا چاہیے. حضرت علی نے جھگڑا نہیں کیا, لڑائی نہیں لڑی, اتحاد سے کام لیا, ایثار سے کام لیا, قربانی سے کام لیا, اپنا حق دے دیا. لہذا یہ بات طے ہے کہ جو اتحاد کی بات کرتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے, جو اختلاف کی بات کرتا ہے وہ شیطان ہے.
بہت شکریہ قبلہ
جی. آغا آپ سے ایک, آپ نے شروع میں بات کی کہ قائد اعظم کی جو فیملی تھی وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی تھی, تو کب وہ رجحان ان کا مطلب شناشری کی طرف گیا؟
پہلا جی اظہار اس کا ہوا جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا, اس پر انہوں نے اوپنلی بجائے جماعت خانے لے جانے کے میت, وہ لے گئے خوجہ اثناشری شیعہ جماعت کے بمبئی کے قبرستان میں اوپنلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اور وہاں سائن کر دیے جو موجود ہے ریکارڈ پر کہ آئی بلانگ ٹو شیعہ اثناشری خوجہ جماعت.
اور فاطمہ جناح بھی اسی حوالے سے ساتھ ساتھ تھی.
فاطمہ جناح ظاہر بات ہے تو قائد اعظم کے ساتھ تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ تو جو قائد اعظم تھے وہی وہ تھی, اور انہوں نے تو بلایا تھا میرے والد کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے.
تو آپ کے والد صاحب کا مطلب قائد اعظم کی فیملی کے ساتھ کچھ ریلیشن شپ تھا یا
نہیں؟ رشتہ نہیں تھا, ان کو معلوم تھا فاطمہ جناح صاحبہ کو اور قائد اعظم کو معلوم تھا. قائد اعظم کئی دفعہ سندھ رسول اسلام میں آئے تھے, میرے والد سے ملے تھے, کئی دفعہ ساتھ چائے پی انہوں نے بیٹھ کر, تو وہ جانتے تھے کہ یہ شیعہ عالم ان کا ہمارے بھائی کا لباس بھی امامہ قبا پہنتے تھے وہ ابا, تو صاحب ہر آدمی پہچان جائے گا کہ یہ شیعہ عالم ہے, تو ان کو معلوم تھا فاطمہ جناح کو کہ یہ شیعہ عالم ہے, اور اس وقت سندھ میں پورے سندھ میں میرے بھائی بھی اکیلے شیعہ عالم تھے, اور یا میرے بھائی مولانا سمرزن صاحب قبلہ حیدرآباد میں شیعہ عالم تھے, امام جمعہ جماعت تھے, بس اور کوئی شیعہ عالم تھا نہیں اس وقت.
تھینک یو. کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ جی تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ. کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے؟
جو پیچھے تصویر لگی ہے یہ مولانا انیس الحسنین صاحب کی ہے نا؟ آپ کے
جی
پیچھے جو آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے.
ہاں
آپ کے پیچھے
تصویر کی میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو, جاؤ جا کے دکھاؤ تصویر, جا رہے ہو محمد الیٹ جاتا ہوں.
یہ ہے تصویر مولانا صاحب کی.
ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نماز کا جی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اگر دعا پڑھا دیں, نماز کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی کنٹینیو کریں گے. دعا پڑھا دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ويسرهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اغض دين كل مدين. اللهم فرج كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد.
ثانك يو ثانك يو.